गिरिगोवर्धाना अलिंदे जमुना जय जय महावाना
सब लोग पुकारो एवरीबॉडी
केशी घाट बंसी वट द्वादश कनन जह सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन केशी घाट बंसी वट द्वादश कनन यह सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन जय वृंदवाना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहाना
सब लोग पुकारो एवरीबॉडी एवरीबॉडी चैंट
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
श्री राधे हे वृषभानंदिनी करुणामयी
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हृदय से पुकारो
हरे राम हरे राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Radhe Shri Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Radhe, Shri Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Thank you, Shri. Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Jai Gurudev. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Nitai Gaura Premanande. Shri Vrindavan Dham ki, Shri Bhandirvan Dham ki, Shri Radha Bhandir Bihari ji ki, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. तो आप सबका श्री भांडीरवन के पवित्र स्थान पर स्वागत है. हरि बोल. श्री भांडीरवन धाम की. तो सबसे पहले मैं आपको एक निमंत्रण देता हूं. वो निमंत्रण ऐसा है कि श्री जी महारानी और श्याम सुंदर जी का विवाह होने वाला है. स्थल भांडीरवन है और समय 9:30 का मुहूर्त है. पुरोहित जी श्री ब्रह्मदेव हैं और आप सबके उपस्थिति में विवाह संपन्न होगा. विवाह के पश्चात कुछ तकनीकी कारण के वजह से प्रीति भोज फोगला आश्रम में होगा. वैसे तो ये बहुत ही प्राइवेट शादी है और इसमें किसी को निमंत्रण वैसे नहीं था, लेकिन गुरुदेव, परम गुरुदेव, छह गोस्वामी, पंच तत्व और स्वयं राधा कृष्ण और स्वयं वृंदावन धाम की ये असीम कृपा की वजह से आप सबको यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। हरे कृष्ण। वैसे तो केवल ब्रह्मा जी इस विवाह में उपस्थित थे और उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ की लीला जो है बड़ी गुप्त लीला है। ये केवल नारद मुनि जी बहुलाश्व राजा को ये कथा बता रहे हैं और गर्ग मुनि ने उसको संकलित किया है, इसलिए उनकी कृपा से हमारे लिए ये लीला प्रकट है। नहीं तो वैसे ये लीला ब्रज में भी प्रकट नहीं है, क्योंकि ब्रजवासियों के सामने भी ये लीला प्रकट नहीं हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको गुरुदेव के आदेश के बारे में बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमको 1986 में, जब पहली बार हम सब ब्रज में आए थे यात्रा करने के लिए, तभी मथुरा स्टेशन पर जो प्रवचन दिया था, आप विश्वास कर सकते हैं? मथुरा स्टेशन पर हमको रिसीव किया गया था महाराज जी द्वारा, और महाराज जी ने वहीं पर एक प्रवचन दिया था। तो उसमें कहा था कि ब्रज में जब हम आते हैं तो उसी क्षण से ही हृदय के अंदर के कोने में श्री राधा रानी की कृपा की याचना करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली, जब तक ब्रज में हैं, जब तक यहाँ से जाते नहीं हैं। तो सबको मैं विनती करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर राधा रानी की कृपा की भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। बाकी सब लीला वीला जो है वो सब बात की बात है, क्योंकि वो तो जब आचार्य कृपा करेंगे तो ही हम समझ आएंगे, लेकिन राधा रानी की कृपा की याचना तो ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए जब कीर्तन करेंगे तो ऐसा रिचुअल के रूप में मत करना, एक रीति रिवाज कर्मकांड के रूप में मत करना, और गायन के रूप में भी मत करना, पुकारने के रूप में करना। भगवान का नाम, राधा रानी का नाम पुकारना चाहिए, संबोधनात्मक है वो, इट इज़ नॉट सिंगेबल, केवल नहीं है वो, संबोधनात्मक नाम है। इसको पुकारने के लिए यहाँ पर सभी देवी देवताएं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवता, सभी महाऋषि, सप्तऋषि सब लोग यहाँ पर आते हैं, सुखदेव, नारद मुनि, व्यास जी सब लोग यहाँ पर आकर टेर लगाते हैं। इसलिए आप इतने भाग्यशाली जीव हैं, महाराज जी बता रहे थे कि ब्रज में आने को मिलना यही हमारे परम भाग्य की बात है। वैसे हमारी योग्यता ना होते हुए भी हमको ब्रज में आने का ये परम सौभाग्य मिल रहा है, मतलब श्री जी बहुत दयालु हैं, इसलिए हमको आने देती हैं। तो उनके प्रतिसाद में क्या करना चाहिए? अगर हमने उन्होंने हमको आने दिया है तो उनके प्रतिसाद में हमको हृदय से उनको पुकारना चाहिए, जय जय श्री राधे श्याम। जो राधा रानी का नाम पुकारता है हरे कृष्ण मंत्र में, हरे के रूप में और वैसे राधा रानी के नाम के रूप में, उसके पीछे पीछे ठाकुर जी चला करते हैं, चलते हुए जो नाम का उच्चारण हो रहा है उसको सुना करते हैं बड़े ध्यान से, और फिर उसी व्यक्ति के हो जाते हैं जो उनके प्रियतमा राधा रानी का नाम पढ़ते हैं। इसलिए अगर कृष्ण भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो श्रीमती राधा रानी का ही नाम पुकारना होगा, तभी वो उनकी प्रीति हमको प्राप्त होगी। नहीं तो वो योगियों को, ध्यानियों को, तपस्वियों को और अनेक कर्मकांडियों को, ज्ञानकांडियों को, सभी सिद्धिकांडियों को, सबको वो दुर्लभ है, किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। उनके 20 नाखून हैं, 10 हाथ के 10 पैर के, उनमें से अनंत किरण निकलते रहते हैं, अभाव, उन अभावों में से एक किरण भी ऐसे व्यक्तियों को दर्शन नहीं होता है। लेकिन जो राधा रानी का नाम पुकारता है उसके पीछे वो स्वयं दौड़ते हुए आते हैं। इसलिए हम सब लोग इसी भावना में रहेंगे, और एक भावना होना ज़रूरी ये है कि ब्रज में होते हुए हमें भिक्षुक के रूप में रहना चाहिए। वी हैव टू कम हियर एज अ बेगर, नॉट एज अ डॉक्टर, मैनेजर, ब्रह्मचारी, सन्यासी और व्हाटएवर। ये सारे हमारे बाहर के आवरण हैं जो हमको भगवान से दूर कर देते हैं। इसलिए आप सबको हम विनती करते हैं कि धाम का पूरा लाभ लेने के लिए हमें ये भिक्षुक भावना अपनानी चाहिए कि हम लोग यहाँ प्रेम की, सेवा की, रति की भिक्षा मांगने आए हैं। उसी भाव में रहेंगे और पुकारते रहेंगे दिन रात, तो फिर कोई बहस नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, जो होगा वह केवल भक्तिमय आदान प्रदान होगा। अगर हृदय के अंदर प्रार्थना है राधा रानी की कृपा की, तो फिर कोई भी मतभेद और कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होंगे और हम दिव्य आनंद का अनुभव करते रहेंगे और धाम का भी पूरा लाभ करते रहेंगे। और भी एक धामवास की एक महति है कि धामवास जो है वो हृदय से करना चाहिए, आत्मा से करना चाहिए, ताकि जब बम्बई जाएंगे, गांव जाएंगे, लातूर जाएंगे, कोल्हापुर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वापस लौट के, तो यहाँ के यहाँ में बिताए गए जो क्षण हैं वो सब हमको याद आने चाहिए। यहाँ पर आँखों के माध्यम के द्वारा जो दृश्य का दर्शन किया है वो याद आना चाहिए, जो कानों से सुना है वो याद आना चाहिए, जो हृदय में अनुभूति हुई है उसकी याद आनी चाहिए, तब हमारी धाम की यात्रा सफल है। और धाम की यात्रा करने के बाद अगर भगवान के नाम के प्रति हमारा स्नेह बढ़ा, जप के विधि के बारे में और प्रेम बढ़ा, आसक्ति बढ़ी और सेवा करने की इच्छा बढ़ी और अहंकार थोड़ा और नष्ट हो गया, तो फिर हमारी धाम की यात्रा सफल है। तो आप सबको वृंदावन धाम, भांडेरवन धाम में आने की बधाई है। और पहले हम इस वन में जो लीलाएं हुई है उसका एक के बाद एक खाली मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो राधा कृष्ण का विवाह इस जगह पर हुआ है, तो आपको प्रभु जी ने पहले ही बताया। इस वन में प्रलंबासुर का वध बलराम जी ने किया है। इस वन में भगवान ने दावानल पान भी किया है। इस वन में बत्सासुर को मारने के बाद में वेणुकूप का निर्माण किया है भगवान ने। यहाँ पर राधा और गोपियाँ कृष्ण के साथ में कुश्ती खेला करते थे, मल्ल लीला कहते हैं उसको। और यहाँ पर विशेष इसका नाम भांडेरवन इसलिए पड़ा है क्योंकि अपने गौचारण लीला में हमेशा भगवान बड़ा आनंद यहाँ लेते हैं, तो गौचारण का भी लीला यहाँ पर है। और गौचारण के लीला के बीच में यहाँ पर ठाकुर जी छाक ग्रहण करते हैं। छाक का मतलब दोपहर का भोजन। सखियाँ जो है वो दूर दूर से अपने घर से भोजन लेकर आती हैं ढूंढ ढूंढ कर, तो जहाँ पर लीला हो रही है वहाँ पर भोजन दिया करते हैं। तो ये भगवान की बड़ी भोजन करने की प्रिय स्थली है भांडीर, यानी भंडारा जहाँ होते रहता है वो है भांडेरवन। इसमें भांडीर वट वृक्ष भी है जहाँ जिसके नीचे हम लोग बैठे हैं। ये वट वृक्ष की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर मैं उसको बाद में बताता हूँ, कोई बात नहीं। और थोड़ा आगे जाकर आप देखेंगे बंसीवट है जहाँ पर भगवान ने बंसी बजा कर लास भी किया था और श्रीदामा जी ने वहाँ पर भगवान का इंतज़ार भी किया था। इस तरह से ये यहाँ की बहुत सारी जिला है। सबसे पहले हम विवाह का वर्णन संक्षेप में करना चाहेंगे। ये आपको वर्णन गीत गोविंद, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में प्राप्त होता है। बहुत सुंदर वर्णन है विस्तार रूप में। तो एक दिन नंद बाबा छोटे से गोद में रहे नंदलाल को लेकर वन में घूम रहे थे। छोटे से बालक को लेकर यहाँ घूमते घूमते आए और अचानक भगवान ने अपनी योग माया ऐसे फैलाई कि सब जगह बादल छा गए, बिजली कड़कड़ाने लगी, हाँ हवा बहने लगी जोरदार और एकदम अंधेरा हो गया। ऐसे डरावना सा माहौल उत्पन्न हो गया। नंद बाबा बेचारे डर गए, उन्होंने कहा अरे कहाँ ले आया बालक को मैं, संकट में आ गया। तो सोच ही रहे थे क्या करना है, कैसे लौटना है वापस। उतने में एकदम दिव्य प्रकाश निर्माण हुआ, इतना दिव्य प्रकाश कि उनकी आंखें चौंधिया गई, बहुत प्रसन्नता हुई उनको देखकर, डर भाग सा गया उनके मन से। और उस दिव्य प्रकाश में से एक सुंदर देवी प्रकट हो गई जिसका सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया गया है गर्ग संहिता में। वो देवी ने प्रसन्न स्मित हास्य किया और नंद बाबा पहचान गए कि ये श्रीमती राधा रानी है। तो उसके पास बालक को लेके गए, उन्होंने कहा कि बहुत वातावरण वैसे संकट का है और आपका वर्णन मैंने गर्ग मुनि से सुना था जब वो आए थे हमारे पास, और नंदलाल आपकी आप ही के इष्ट हैं और आप भी उनकी इष्ट हैं, तो कृपा करके आप इसे को संभाल लीजिए, इसकी रक्षा कर लीजिए, मुझे भी बचाइए। तो राधा रानी ने छोटे से कन्हैया को अपने गोद में ले लिया। बड़ी सुंदर लीला है। वो वहाँ पर पूर्ण किशोर अवस्था में, छोटी सी अवस्था में थी पहले, प्रकट हुई थी और वो लाला को लेकर अंदर जंगल में चली गई। जैसे ही अंदर चली गई तुरंत नंदलाल जी जो है वो 16 वर्ष के हो गए, राधा रानी भी 16 वर्ष की हो गई पूरे श्रृंगार के साथ में। और उसके बाद में उसके बाद में वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सृष्टि के रचयिता विधाता। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके कृष्ण के साथ में, राधा रानी कृष्ण के साथ में विवाह करने का हमारा प्रयोजन है, ये लोक व्यवहार के लिए करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये गुप्त लीला होगी, यहाँ पर कोई नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत वहाँ पर यज्ञ मंडली बनाई, यज्ञ कुंड बनाया, सारी सामग्री इकट्ठा किया, और पहले तो भगवान की स्तुति की उन्होंने। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप हमारे परम नाथ हैं, परम स्वामी हैं, हम आपके दास हैं, और ये आपके साथ जो श्रीमती हैं, जब आप वैकुंठनाथ के रूप में रहते हैं तो वो लक्ष्मी जी के रूप में आपकी सेवा करती हैं, जब आप रामचंद्र के रूप में आते हैं तो जनक नंदिनी सीता देवी के रूप में आपकी सेवा करती हैं, जब विष्णु बनकर आते हैं तो कमला देवी के रूप में आपके साथ रहती हैं, जब आप यज्ञ पुरुष बनकर आते हैं तो दक्षिणा देवी के रूप में आपके साथ में आती है, जब नरसिंह भगवान के रूप में आप आते हैं तो रमा देवी के रूप में आपके साथ रहती है, जब आप नर नारायण का भेष धारण करते हैं तो परम शांति के रूप में आपके साथ रहती है, जब परम ब्रह्म बन जाते हैं आप सबके हृदय में तो तटस्था प्रकृति के रूप में आपके साथ रहती है, और जब काल रूप बन जाते हैं तो वह प्रधान प्रकृति बनकर आपके साथ रहती है, और आखिर में जब आप महत तत्व बनकर आते हैं तब ये सगुण माया के रूप में आपके साथ रहती है। तो यही श्रीमती राधा रानी, आप जब श्री हरि कृष्ण के रूप में आए हैं तो आपके सामने विराजमान हैं, और मैं आप दोनों का विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े ही, कहते ना मराठी में सागर संगीत, यानी कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिस्टमेटिकली इन दोनों का यहीं पर विवाह किया। ये भांडेर वृक्ष है, ये बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक वृक्ष है। कृष्ण भगवान के समय ये जो वृक्ष था ये इतना विशाल था, इतना विशाल था कि इसकी शाखाएं नंदगांव तक पहुंचती थी, और ग्वाल बाल वहां से इसकी शाखा पर चढ़कर जमुना जी को पार करके यहां तक आते थे, और दोबारा यहां से बैठकर शाखा में जमुना जी पार करके नंदगांव जाते थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विशाल वृक्ष था ये। इस वृक्ष के बारे में बहुत चर्चा है शास्त्रों में, इतना विशाल वट वृक्ष था ये। इसकी केवल एक तरफ नहीं शाखा थी नंदगांव की ओर, सभी जगह ब्रज में गोकुल तक भी इनकी शाखाएं विस्तारित हो गई थी, और उस पर वो खेलते भी थे, कूदते भी थे, यात्रा भी करते थे, सफर भी करते थे, भोजन भी करते थे, बंदरों की तरह कूदते भी थे, सब प्रकार की लीला इस पर करते थे। और इसी विशाल वृक्ष के नीचे, यहाँ पर जहाँ पर आपके सामने राधा कृष्ण का विग्रह विराजमान है, यहीं पर यज्ञ वेदी बनाकर ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था। और एक पिता जैसे अपनी कन्या का कन्यादान करता है, यानी कि पाणी ग्रहण कराता है, वधु के वर को वधु का पाणी ग्रहण कन्या के पिताजी करते हैं, तो वो काम भी ब्रह्मा जी ने किया, कन्यादान भी किया, यज्ञ पुरोहित का काम भी किया, और फिर दक्षिणा की अपेक्षा की कि मैं पुरोहित बन गया, आपका दक्षिणा देना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं क्या दक्षिणा आपको दें, तो कहते हैं कि आपके दोनों के चरणों की प्रिय भक्ति हमेशा के लिए प्राप्त होती रहे, यही हमारी दक्षिणा रहेगी। और भगवान ने कहा तथास्तु, जय जय श्री राधे। इसके बाद में ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, उनका कार्य समाप्त हो गया, लेकिन लीला समाप्त नहीं हुई। अभी नवपरिणीत जो दाम्पत्य है राधा और कृष्ण श्याम सुंदर जी, सबसे पहले तो यहाँ पर भगवान ने एक बहुत सुंदर भवन निर्माण किया, बहुत सुंदर भवन, सुसज्ज और सारी ऐश्वर्य से संपृक्त। उसमें जाकर राधा रानी ने भगवान श्याम सुंदर के लिए, उनके नए नए जो पति बने हुए हैं उनके लिए, बहुत सुंदर भोजन बनाया और अपने हाथ से उनको परोसा। उसके बाद में पान सुपारी खिलाया, बीड़ा तांबुल, और उसके बाद में दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर इस वन में विहार किया। फिर वो खेलने का मन किया तो राधा रानी छुप गई, कृष्ण ढूंढने लगे। जब कृष्ण राधा रानी के पास में आए, एक फुट के ऐसे दूरी पाए, तो राधा रानी वहाँ से भी भाग गई। इस तरह से ये लुका छुपी का खेल बहुत देर तक चलता रहा, जब कृष्ण छुप गए कि राधा रानी छुप गई। तो फिर राधा और कृष्ण निर्जन स्थली में गए, बीच गहरे जंगल में, और वहाँ पर केवल अकेले राधा रानी के साथ भगवान ने रास लीला रचाई, रास का नृत्य किया बहुत देर तक। फिर उन्होंने यमुना प्रवेश किया, क्योंकि यमुना जी आप जानते हैं ना बहुत पास में है, जो भगवान के प्रिय 12 वन है उसमें से 5 वन जो है वो यमुना के इस तरफ है जहाँ पर हम बैठे हैं, और 7 वन जो है वो यमुना के उस तरफ है जहाँ वृंदावन है, मधुवन, तालवन वगैरह है, भांडीर वन, भद्रवन, बेलवन, ये सब जमुना जी के हमारे साइड में है, यानी कि पूर्व साइड में है। पूरी आप दिखाई पड़ रहे हैं ना यहाँ पर सूरज का। तो उन्होंने यमुना प्रवाह प्रवेश किया और दोनों ने यमुना जी में छलांग लगाई, स्नान किया यमुना जी में, फिर स्नान से मुक्त होकर नौका विहार किया यमुना जी के जल में। यमुना जी के बारे में आपको बताएंगे, यमुना जी तो बहुत भाग्यशाली देवी हैं, नदी हैं, जो ब्रज के भगवान के सान्निध्य के लिए तरसती हैं और भगवान उनको अपना अंग संग देते हैं, उसमें जल विहार करते हैं, नौका विहार करते हैं। उसके किनारे में उन्होंने बांसुरी सीखी राजा रानी से, उनके किनारे में नृत्य सीखा राजा रानी से, उनके किनारे में कई राक्षसों का वध किया, रासलीला रचाया, कई सारे अनंत लीलाएं उनके जमुना जी के किनारे में किया है। जमुना जी ब्रज लीला का एक अविभाज्य अंग है, जमुना जी के बिना ब्रज अधूरा है। और ना ही राधा रानी इस वन में वृंदावन में होम वृंदावन में आना चाहती हैं अगर वो जमुना जी वहाँ पर नहीं है। तो जमुना जी में जल क्रीड़ा नौका विहार करने के बाद में जमुना जी के भीतर लक्ष दल के कमल प्रफुल्लित हो रहे थे, एक एक कमल के एक लक्ष पंखुड़ियाँ थी, ऐसे अनेक कमल वहाँ पर थे। उसमें से एक राधारानी ने लिया और जैसे राधारानी ने लिया तो श्याम सुंदर जी ने उनके हाथ से उसको छीन लिया और भागने लगे। फिर राधारानी उनके पीछे भागने लगी तो भागकर उन्होंने भगवान की बंसुरी और लकुटे को छीन लिया। फिर भगवान ने कहा नहीं नहीं मेरी बंसुरी लकुटे दे दो, तो उन्होंने कहा कमल दल को लौटा दो। फिर नहीं नहीं बंसुरी दे दो, नहीं नहीं हम नहीं देंगे हम नहीं देंगे हम देंगे हम नहीं देंगे। बहुत देर तक छिना झोंकी, क्या नोक झोंक हो गई उनकी। फिर भगवान ने लक्ष्य दल का कमल लौटा दिया और राधा रानी ने बंसुरी और लकोटी भी लौटा दी। उसके बाद में कृष्ण ने राधा रानी का मनोहर श्रृंगार किया अपने हाथों से। और क्या क्या किया बड़ी ध्यान से सुनना, ये बड़ी अंतरंग लीला है, इस पर ध्यान करके इसका मनन करना चाहिए, हृदय की बड़ी शुद्धि होती है। भगवान ने उनके मुख पर पत्रों की रचना की, मतलब एक होता है श्रृंगार पत्रावली कहते हैं उसको, आपने देखा होगा ना राधा दामोदर के मंदिर में, गोविंद जी के मंदिर में वो गोल गोल गाल पर वो फूल बनाते हैं ना, सफ़ेद रंग के पीले रंग के, उसको पत्रावली कहते हैं, उसको पत्र रचना कहते हैं। उसमें कई सखियाँ निपुण हैं, लेकिन यहाँ पर राधा रानी स्वयं सभी सखियों की शिरोमणि उपस्थित है, तो उनके गाल पर भगवान ने पत्रों की रचना की, पैरों में महावर लगाया। पता है महावर क्या होता है? उसको लोकल भाषा में आल्टा कहते हैं, आल्टा लाल रंग का जो होता है ना पिगमेंट, उसको पैरों में लगाते हैं स्त्रियाँ। भगवान ने स्वयं राधा रानी के चरणों में लगाया, नैनों में काजल की एक पतली रेख लगाई, नैनन में राखो मोरे जैसे काजल की रेख। भक्त लोग जो है तमन्ना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके नजरों में हमेशा रहना चाहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, आपके नज़र में हम हमेशा रहे। वी वॉन्ट टू बी ऑलवेज इन योर विजन, वी वॉन्ट टू सी यू ऑल्सो, बट वी ऑल्सो वॉन्ट यू टू सी अस। तो भगवान ने नयनों में काजल की पतली रेख लगाई, रत्नों को और फूलों के साथ में उनका श्रृंगार किया। और जब राधा रानी का श्रृंगार पूरा हुआ तो राधा रानी ने कृष्ण का श्रृंगार करना चाहा, और ऐसी इच्छा होते ही तुरंत बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए, शिशु का रूप धारण किया जैसे उनको पहले प्राप्त हुआ था। तो राधा रानी ने कहा अरे आपकी माया हमारे पर क्यों फैलाते हो, हमें भी सेवा का मौका दो। तो उन्होंने कहा कि वो मौका आपको आगे मिलेगा, अभी यहाँ लीला समाप्त करते हैं, अभी हमको अपने अपने घर में लौटा दो। तो राधा रानी फिर दोबारा एक माँ की तरह उस बालक को गोद में लेकर नंद भवन जाती हैं, यहाँ से नंद भवन में यशोदा माई के सुपुर्द कर देती हैं। यशोदा माई कहती है कि अरे बड़े संकट में तुमने मेरे बालक की रक्षा की है, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तो गर्ग मुनि के इस गर्ग संहिता में नारद मुनि कहते हैं कि ये लीला जो ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसे जीवन में कभी पाप नहीं छुएगा। जय जय श्री राधे श्याम। और आचार्यगण कहते हैं कि ऐसी अंतरंग लीला जो है वो हमेशा गौरव भाव में सुनना चाहिए, मनोरंजन के भाव में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हम इसके सुनने के योग्य नहीं है ना कहने के योग्य हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार उसका उसको दोहरा रहे हैं तो एक ऑ एंड रेवरेंस यानी कि ऐश्वर्य गौरव की भावना में उसको सुनना चाहिए, तब जाकर उसका हृदय पर वो सहजिया परिणाम नहीं होता है। और हृदय की शुद्धि हो सकती है। इसके बाद में जो प्रीति भोज है आपके लिए वो खोखला आश्रम में है, शादी के बाद का। हरे कृष्ण। तो एक बार यहाँ पर जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे से थे तो आंगन में ही खेलते थे, थोड़े से बड़े हो गए तो उनको बछड़ों का गौचारण सौंपा गया। तो वो वृंदावन के अंदर बहुत ही निकट घर के पास गांव की सीमा तक ही उनका गौचारण हुआ करता था। क्या रिदीम था उसका कि नंद भवन में सबसे ऊंचाई पर जब जाएंगे तो चारों ओर जहां तक नजर पहुंचती है वहीं तक गौचारण होना चाहिए। जब भी दिल करे बालक कहाँ है तो माता और पिता को ऊपर जाने के बाद दिखाई पड़ना चाहिए कि भाई वो वहाँ है, वो सीमा के आगे नहीं जाने। वो कहते हैं वत्सपाल लीला, बालक की लीला। तो वो जब गौ गौ बछड़ों का भार उनको दे दिया गया तो उन्होंने कुंज निकुंजों में आनंद लेना शुरू किया, लुका छिपिका, रेंगते हुए चलना, और कटी प्रदेश में किनकिनी जाल यानी कि चैन जो होता ना श्रृंगार जो आवाज़ करता है बहुत मधुर, पैरों में मंजीर, नुपुर की मधुर झंकार, बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए, कृष्ण भगवान पीतांबर धारण किए हुए, दोनों भाइयों के हार बाजूबंद कलाई बंद से उनके शरीर को सुशोभित करते थे माता जी, बांसुरी बजाते हुए चलते थे वनों में। हाँ, और कभी कभी जो कृष्ण भगवान और बलराम जी के अलंकारों का जो सुंदर ध्वनि निकलता था उसकी कोई ग्वाल बाल नकल करते थे, और नकल करते करते उनके पीछे पीछे भागते थे, दौड़ते थे। और विशेष करके जब पंछी आकाश में उड़ते थे तो पंछियों की छाया को पकड़ने के लिए भागते थे सब लोग। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, उनकी छाया जमीन पर गिर रही है, तो सभी ग्वाल बाल कृष्ण बलराम जी पंछियों की छाया के पीछे अनुसरण किया करते थे। बंदरों की नकल करते थे, आप लोग करते हैं कभी कभी? ऐसे कहते हैं कि आपको कोई डिप्रेशन आता है कभी तो केवल वृंदावन के बंदरों को देखो, आपका सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। घंटों घंटों आप देख सकते हो, सब आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, क्योंकि ये रामचंद्र जी के बंदर थे, उन्होंने भगवान की बहुत बड़ी सेवा की थी। तो उन्होंने कहा राम जी के अवतार में आपने हमारी बहुत सेवा की है, अभी कृष्ण के अवतार में केवल आनंद लेना। तो उन्होंने अपने घर से उनको माखन अपने हाथ से खिलाया, मेवा खिलाया, हाँ हर समय उनके साथ में आनंद लिया। तो बंदरों की नकल करते थे, मेंढक की तरह कूदते थे, और मेंढक की तरह कूदते 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 जमुना जी में छलांग लगाते थे, पंछियों की आवाज़ निकालते थे, और इस जैसे बड़े बड़े वृक्षों पर छलांग लगाया करते थे। ऐसे ही वृंदावन के वन में जब वो गौचारण कर रहे थे तो एक बार एक कंस का भेजा हुआ बछड़ा उसके अंदर घुस गया। अरे ऐसा है कि भगवान के पास लाखों गायें हैं, लाखों बछड़े हैं, और ऐसा नहीं कि केवल वो कृष्ण की गायों को चारण करते थे, सभी ग्वाल बाल अपने गायों को भी लेके आते थे, तो लक्ष लक्ष करोड़ करोड़ बछड़े हुआ करते थे। लेकिन इनको इनका हर एक बछड़े के साथ में इतना वैयक्तिक व्यक्तिगत संबंध हुआ करता था कि सुबह कौन से बछड़े निकले हैं ये सबको पता हुआ करता था। हाउ मेनी बेबी काउज हैव कम, दे ऑल यूज टू नो। तो जब ये ग्वाल ये बछड़े को देखा तो कृष्ण भगवान ने बलराम जी से कहा, ये बछड़ा तो सुबह हमारे साथ में नहीं आया था, ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, इसकी आंखों में कितनी लाल 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 आंखें करके घूर रहा है हमारी ओर, और उसका चेहरा देखो, उसकी आंखें देखो, कैसे पूछ उठा उठा कर भाग रहा है। तो उनके पास में गए वो उसको थोड़ा सा लोकेट करने के लिए, हाँ थोड़ा बोलते ना बाजू में ले लेंगे इसको। पास में गए तो उसने क्या किया, एक झट से पीछे के दो पैर से भगवान के कंधों पर लत्ता प्रहार किया बहुत जोर से, तो सब ग्वाल बाल डर गए और भाग गए दूर। उतने में कृष्ण भगवान ने उस बछड़े के दो पैरों को पकड़ा पीछे के और गोल गोल घुमाकर उसको जमीन पर पटक कर फेंक दिया। फिर दोबारा तुरंत उठाकर गोल गोल घुमाकर कपित्त के वृक्षों पर उसको फेंक दिया। इस तरह से फेंक दिया कि वो तो कपित्त का वृक्ष गिर गया, लेकिन ऐसे गिरा अन्य वृक्षों पर गिरा, और एक एक करके सारे कपित्त के वृक्ष जो है वहां पर गिर गए, और इस वत्सासुर का देहांत हो गया। सब लोग देख रहे हैं ग्वाल बाल, अरे वत्सासुर को भगवान ने मार दिया, तो आया था बछड़ा बन के लेकिन भयंकर स्वरूप धारण किया उसने, और भगवान ने बहुत आसानी से उसको मार दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान के शरीर में विलीन हो गई। तो ये कथा सुन रहे नारद मुनि के मुख से बावलाश्व राजा, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये पुराने जमाने का कोई महापुरुष था क्या, इसको ऐसा भाग्य मिला कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया उसने। तो फिर नारद मुनि उनको बताते हैं कि मूर नाम का राक्षस था, आप सुनते हैं जानते हैं ना, कली एकादशी थी तो एकादशी के दिन मूर राक्षस का पीछा भगवान कर रहे थे, तो वो धान्य के खेत में जाके छुप गया था, इसलिए वैष्णवगण एकादशी को धान्य नहीं खाते हैं क्योंकि धान्य जो है वो राक्षस स्वरूप बन जाता है उस दिन, फिर उसका वध किया भगवान ने। तो ये मूर राक्षस का एक बालक था, उसका नाम था प्रमिल, प्रमिलासुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रमिल नामक राक्षस इतना बलशाली था कि वो सुंदर भी था, बहुत शरीर से बहुत ऐश्वर्य संपन्न था। उसने राक्षसों के राक्षस होते हुए भी सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। और वो एक दिन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आया, बड़े गर्व से ठाट से आया था वो। उसने उनके आश्रम में वो जो होम धेनु नंदिनी का दर्शन किया, अब जानते हैं ना नंदिनी मतलब कामधेनु की कन्या, वशिष्ठ मुनि के पास वो कामधेनु भी थी और नंदिनी भी थी। नंदिनी को उन्होंने देखा कि अरे ये तो सब कुछ आश्रम में जंगल में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक गाय है ऋषि के सारे जरूरतों को पूरी करती है। तो उसने इच्छा किया कि चलो हमको एक नंदिनी मिलनी चाहिए, इसलिए ये प्रमिलासुर जो है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पर भिक्षा मांगने आया और बार बार उस नंदिनी को मांगने लगा। तो वशिष्ठ मुनि तो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते हैं भविष्य भूत और वर्तमान में क्या है, इसको पहचान लिया उन्होंने, लेकिन कुछ बोले नहीं, वो शांत रह के चले गए। तो नंदिनी ही बोल उठी, अरे चोर तू ब्राह्मण का रूप धारण करके मुझे लेने के लिए आया है, तू गाय का बछड़ा बन जा। तुरंत गाय का वत्स बन गया वो, तो गाय का वत्स बनते ही तुरंत माफी मांगने लगा, शर्मिंदा हो गया, पश्चाताप करने लगा, उशाप मांगने लगा। तो फिर गाय ने ही बोल दिया चलो कोई बात नहीं, जब द्वापर के अंत में कृष्ण आएंगे तो तुम उसके उनके बछड़ों के झुंड में घुस जाएगा तो श्याम सुंदर के हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए जब श्याम सुंदर जी ने उनका उद्धार किया तो ये ज्योत जो है उसके शरीर में घुस गई। तो ये वत्सासुर का वध हुआ, तो हमेशा तो सब लोग अच्छा इस बार भी आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, सभी ग्वाल वालों ने साधुवाद मतलब साधु 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 करके भगवान का गौरव किया। भगवान बड़े ठाट से उनके पास में गए और अचानक सब ग्वाल बाल पीछे हट गए। क्यों क्यों पीछे हट गए? अरे उन्होंने कहा आपने बछड़ा का वध किया है, महापातक किया आपने, और अब ऐसे पापी व्यक्ति के साथ हम लोग खेलेंगे नहीं अभी, बोला ऐसे कैसे चलेगा, आपके बिना तो मैं एक क्षण भी रहने सकता। हाँ मन में कहते हैं सब वैकुंठ वैकुंठ सब छोड़ के आया हूँ तुम्हारे संग में खेलने के लिए और तुम मेरे लिए खेलेंगे नहीं, पाप हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताओ क्या करना चाहिए। मैंने कहा अरे सभी तीर्थों में स्नान करना होगा तुमको, तब जाकर तुम इस पाप से इस महापातक से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि 5 तरह के महापातक बताए गए हैं, उसमें से एक गाय का वध करना है, दूसरे के स्त्री के साथ संग करना, चोरी करना, आग लगाना, व्यभिचार और बाकी हमारे 4 टोटल 7 प्रकार के पातक कहे गए हैं। उसमें गौ हत्या जो है ब्रह्म हत्या गौ हत्या बहुत पातक बताया गया है, उसके लिए सभी तीर्थों में स्नान दर्शन दान पुण्य करना चाहिए। भगवान ने कहा बस इतनी बात है, चलो यही बुला लेते, सबको बुला लेते हैं। तो अपने बंसी से यहाँ पर उन्हें कुआं खोदा, एक क्षण में कुआं तैयार हुआ और सारे निर्माण के सृजन के जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सब प्रकट हो गए उसके अंदर, वो सारी नदियाँ जलाशय कुंड सरोवर जितने भी हैं वो सब उसके अंदर प्रकट हो गए। और भगवान ने छलांग लगाकर स्नान किया और संपृक्त होकर बाहर आ गए। तो वो वेणुकूप है जो भगवान ने यहाँ पर अपने वेणु से बनाया है, और उस और जो भगवान ने यहाँ पर वेणुकूप बनाया है तो इसमें जब अमावस्या आती है सोमवार के दिन, उसको कहते हैं सोमवती अमावस्या, उस सोमवती अमावस्या के दिन इस कुएं को बाढ़ आती है, मतलब कुआं ऐसे उछलता है, उसका पानी बाहर निकलता है और उस कुएं से दूध भी निकलता है। और ऐसे कहते हैं यहाँ पर बदंती ऐसी है कि जब उस दिन कोई विवाहित औरत जिसको पुत्र नहीं है वो यहाँ पर आती है, व्रत करती है और इस कुएं के जल में स्नान करती है तो उसको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, ऐसे वदंती यहाँ पर है। लेकिन हमारे लिए वो वदंती इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि ब्रज के अंदर सारे तीर्थ समाये हुए हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रजवासियों को भगवान हमेशा कहते थे कि आपको ब्रज के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो कहीं यही नहीं है। राधा कुंड श्याम कुंड में भी सभी तीर्थ 68,000 विराजमान हैं, विमल कुंड में 84,000 तीर्थ विराजमान हैं, और अन्य कुंड तो है ही। यहाँ पर रामेश्वर है, श्रीलंका है, सेतु बंद है, यहाँ पर बद्री है, केदार है, गंगोत्री जमुनोत्री, हर की पैड़ी, मानस सरोवर, हाँ क्या नहीं है, कोसी में द्वारका है, गोमती गंगा, रत्नाकर, सब जगह सभी तीर्थों को भगवान ने आश्रय दिया है। सभी तीर्थ अपनी अपनी जगह पर लोगों की सेवा करते रहते हैं, लेकिन स्वयं के उद्धार के लिए श्री ब्रजभूमि का आश्रय ग्रहण करते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी पत्थर बनकर यहाँ पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बरसाने में, शिव जी नंदगांव में, और गिरिराज जी गोवर्धन के रूप में विष्णु जी विराजमान हैं। सब लोग उनकी शरण चाहते हैं। तो इस तरह से ये वेणुकूप जो है, ये सारे ब्रह्मांड का जितना पवित्र स्थान है वो एक जगह इकट्ठा करके रखा है। तो आप जाने के पहले जरूर इसके जल का आचमन और छिड़काव कर लेना, ताकि आपको भी सभी तीर्थों में, पूरे विश्व के ब्रह्मांड के तीर्थों में स्नान करने का, भेंट देने का लाभ मिलेगा। तो ये हुई वत्सासुर की लीला। फिर जब भगवान बड़े हुए, गोपाष्टमी के दिन उनको बड़ी गायों का भार सौंपा गया, और बछड़ों को छोड़कर बड़ी गायों को लेकर भगवान दूर दूर तक जाने लगे। तो उसी के दौरान एक बार वो यहाँ पर भांडीरवन में लीला कर रहे थे। भांडीरवन उनका गौचारण का बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, प्रिय स्थली है। एक सबसे प्रिय स्थली है उनका ग्वाल पोखरा, द हाइएस्ट फेवरेट प्लेस फॉर गौचारण, ग्वाल बाल, सख्य लीला। दूसरी स्थली है पावन सरोवर, और उनमें से ही लिस्ट में भांडीरवन का भी नंबर लगता है। ये सब हमारे आचार्य जो हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। तो यहाँ पर जब लीला कर रहे थे तो सब लोग खेल रहे थे, मतलब गौचारण का होता है बहाना, लेकिन खेलने की इच्छा होती है उनको। गौएं अपने अपने चरती रहती हैं, उनके ऊपर देख रेख करते हैं, लेकिन खेल में मशगूल हो जाते हैं। तो क्या खेल करना शुरू किया कि हम लोग ऐसा खेल खेलेंगे कि जिसमें जो हार जाए, दो पार्टी बनाएंगे कृष्ण की और बलराम की, और दो पार्टी में जो हार जाएंगे वो जीतने वालों को कंधे पर बिठाकर बहुत बढ़िया सैर कराएंगे। आप लोग मेरे खेले ऐसा कोई गेम बचपन में? हम तो खेले हैं, हमको याद है बचपन में कि कंधे पर बैठकर वो हमको सफ़र कराते थे। तो ये गेम तय हुआ, तो कृष्ण की पार्टी और सुदामा की पार्टी, बलराम जी की पार्टी, ऐसे बहुत पार्टियाँ हो गई। तो इसका विस्तार का वर्णन भागवत में दिया है। तो कृष्ण को सुदामा ने कंधे पर उठा लिया, और बलराम जी का जब समय आया तो बलराम जी को उठाने को कोई तैयार नहीं था। बलराम जी तो बलराम जी है ना, तो उस समय सब लोग पीछे हट गए। तो अचानक एक ग्वाल बाल सामने आया और उसने कहा मैं उठाऊंगा इसको। सब लोग आश्चर्य हो गए, अरे हम सब लोग मना कर रहे हैं, कोई नया बालक आया है, सुबह हमारे संग में नहीं आया था। हाँ कोई बात नहीं, ग्वाल बाल है, किसी घर से आया होगा, गोप के घर से। और उनने बलराम जी को अपने कंधे पर धारण किया, और एक जगह तय थी जहाँ पर उनको जाना था और वहाँ से लौट के आना था। तो सब लोग, कृष्ण को भी सुदामा लौटा कर ले आया, मधुमंगल को सुदामा, सब बाकी सब लोग घूम के लौट के ले आए। लेकिन बलराम वाला जो बाल बाल था वो उसके दूर निकल गया, मथुरा की ओर जाने लगा। तो बलराम जी का आश्चर्य हुआ, अरे ये बाल बाल तो अजीब लगता है, ये तो बॉर्डर भी पास करके आया इसको लौटना था बीच में, लेकिन ये चल ही रहा है। तब उनको समझ में आया कि ये बाल बाल नहीं है, राक्षस है, प्रलम्बासुर। तो प्रलम्बासुर, जैसे ही भगवान ने उसको एक जोर से बात किया तो तुरंत अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। पहाड़ जैसा रूप था उसका, लाल लाल कोयले की तरह आंखें थी, और जैसे ज्वाला होती ना अग्नि की, वैसे उसके लाल लाल बाल थे, और भयंकर उसका स्वरूप था, ऐसा उग्र स्वरूप था। उसके कंधे पर भगवान विराजमान थे बलराम जी। तो भगवान बलराम जी ने उसके सर पर ऐसा मुक्का मारा कि एक ही मुक्के के प्रवाह से जैसे पर्वत का शिखर वज्र के आघात से फटता है और चूर चूर हो जाता है, वैसे उसका शीश जो है, जो पर्वत समान शरीर था, उसका शीश उसका शिखर के समान था। उस पर भगवान के बलराम जी के मुष्टि प्रहार करने से उसका भग्न होकर चूर चूर हो गया वो, और वहीं पर उसका देहांत हो गया। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, उसके भी शरीर से ज्योत निकलकर बलराम जी के शरीर में विलीन हो गई। तो फिर बहुलाश प्रश्न करते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। तो उसका पूर्व इतिहास नारद मुनि जी बताते हैं। अब इसका ऐसा है कि सुखदेव मुनि भी सब जानते थे ये सब बातें, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। अगर वो इनका सबका राक्षसों का पूर्व इतिहास बताते बैठते तो 7 दिन उसमें बीत जाते। इसलिए उन्होंने भागवत में एकदम इम्पॉर्टेंट बातें ही परीक्षित महाराज को बताई हैं। लेकिन गर्ग संहिता जो है वो कृष्ण भगवान की लीला की एकदम विस्तार रूप का वर्णन है, स्वयं गर्ग जी उसका महात्म्य बताते हैं। तो आप जानते हैं कि यक्षराज कुबेर हैं जो रावण के भी सौतेले भाई हैं, और भगवान का देवताओं का जो भी ट्रेजरी है संपत्ति है उसकी रक्षा करते हूँ। तो उन्होंने एक वन बनाया था, नाम था चैत्र रथ वन, जिसके अंदर बहुत सुगंधी बहुत अद्भुत और दिव्य फूल हुआ करते थे, और अनेक देवताएं मोहित होकर उन फूलों को लेके जाया करते थे। तो कुबेर ने यक्षों को वहां पर पैरे के रखा था, फिर भी ये लोग ट्रिक करके उसको फूल को लेके जाया करते थे, तो रक्षा फेल हो गई। इसलिए कुबेर ने क्या किया, और उच्च दर्जे की रक्षा वहां पर लगा दी। मतलब क्या क्या, उन्हें शाप दे दिया कि कोई भी यहां पर फूल चोरी करेगा तो वो राक्षस बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस एंड सटल सुरक्षा कवच। तो सब लोग भी दूर हट गए, कोई चोरी करना जिसको पता हो गया था वो बंद हो गया। लेकिन एक दिन आप सुना ना कहानी में, वो गजेंद्र की कहानी में जब उनकी मुक्ति हो गई तो एक गंधर्व भी वहां प्रकट हो गए। कौन से रूप में, जो मगरमच्छ था वो राजा हुहू के रूप में प्रकट हो गया, और ये जो हाथी था वो इंद्रदुम्न बन गया। तो वो जो गंधर्व था हुहू, उसका एक पुत्र था विजय गंधर्व। तो विजय गंधर्व एक बार रथ में बैठकर घूमते घूमते वहां पर आ गया, और उसको इतने फूल अच्छे लगे उसने फूल तोड़ के ले लिए, और अचानक वो राक्षस बन गया। तो उसको पता नहीं चला ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ पाप तो नहीं किया। तो यक्ष लोग बोलने लगे कि यहाँ पर शाप है, आपको पता नहीं था। तो बड़ा दुखी हो गया वो कि मैंने तो अनजाने में ऐसा गलती कर लिया और मुझे शाप लग गया। तो यक्षराज कुबेर ने उनको बताया, चलो तुमने अनजाने में किया है तो हमको उस शाप देते हैं कि जब कृष्ण भगवान आएंगे तो तुम ग्वाल बाल बनकर उसके मंडली में घुस जाना, तो वहाँ पर बलराम जी के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस तरह से ये पूर्व इतिहास नारद मुनि जी बहुलाश्व को बताते हैं। श्री प्रलम्बासुर हरि श्री बलराम जी महाराज की। इसलिए इस वन में बलराम जी का मंदिर है, बहुत सुंदर विग्रह है, आपने दर्शन किया जाते वक्त कर लेना, यहीं पर उन्होंने प्रलम्बासुर का वध किया था। प्रलम्बासुर का वध करने के बाद में सब लोग मुंजा टावी नाम के वन में प्रवेश किया उन्होंने, मुंज वन में, और फिर दोबारा खेलने लगे, और खेलते खेलते मशगूल हो गए, और गायें जो है वो आगे चली गई वन में, गहरे वन में। उतने में वहाँ पर आग लग गई बहुत ज़ोरदार। यहाँ पर सब लोग विश्राम कर रहे थे तो उनको आग लगी, आग की आँच लगने लगी, और गायें और ग्वाल बाल पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग बचाओ बचाओ, हमें इस आग से बचाओ, हमारा जीवन समाप्त तो हो रहा है इस आग की अग्नि से। उस समय कृष्ण बलराम वहाँ भाग के गए, और कृष्ण भगवान ने सभी ग्वाल बालों को कहा आंखें बंद कर लो। जैसे सभी ग्वाल बालों ने आंख बंद कर ली, भगवान ने सारे दावानल को पी लिया। दावानल ने जंगल की अग्नि, दावानल जो होता है वो ऐसे बुझती नहीं है, केवल वर्षा होने से बुझती है, बहुत भयंकर होती है, वो चारों तरफ से आती है और घेर लेती है और विध्वंस कर लेती है। तो वो दावानल फैली हुई थी, उसके बीच में ग्वाल बाल सब फंसे हुए थे, तो भगवान ने उनसे आँख बंद करवा कर मुँह से सारा अग्नि को प्राशन कर लिया। अरे बोलो आँखें खोलो, ताकि खोले, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई आग नहीं, कोई राख नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया माहौल है, हरियाली है, सब कुछ है, जैसे आग हुआ हुई नहीं थी, ऐसा वातावरण था। तो ये उन्होंने आँख बंद करने को क्यों बताया, क्योंकि पहले जब कालिया घाट पे कालिया का दमन किया था उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने द्वादश आदित्य टील पर वाकर विश्राम किया था, वहाँ पर 12 सूर्यों ने उनको उष्णता दिया था, प्रस्कंदन सरोवर तैयार हो गया था, और वहाँ से वो चले गए थे और एक वन में, तो वहाँ पर भी ऐसी आग लग गई थी, दावानल, हाँ ये दूसरा नंबर का दावानल है, पहला नंबर का वहाँ पर हुआ था कालिया के दमन के बाद में। तो वहाँ पर सभी की आँखों के सामने कृष्ण भगवान ने आग पी ली थी। अभी ग्वाल बाल कैसे बच्चे हैं बेचारे, वो रोज जो भी होता है जाके घर में रिपोर्ट देते हैं, सुना सुना तुमने आज हमारे कन्हैया ने ऐसे किया वैसे किया, अरे आज तो आग पी लिया। तो मैया को बड़ा डर लगा, अरे तो अजीब बालक है, हाँ आग भी पी लेता है, लोग पानी पीते आग पीता है। तो बहुत डर गए थे वो, मतलब अभी देखो खेल खेल में बच्चे लोग मट्टी खा लेते हैं, कभी कुछ गोटी खा लेते हैं, तो कभी अटकती है, फिर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, फिर उसको लोकल एनेस्थेसिया देकर उसको गोटी को निकालना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है। तो वैसे ही अगर गोटी गली के अंदर में पत्थर गया तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन आग पीने के बाद क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। तो मैया बाबा बहुत दुखी हो गए थे और चिंतित भी हो गए थे। ये उनकी चिंता को देखकर ये बालक दोबारा घर में जाकर ये ना बताएं, इसलिए उन्होंने उनको कहा आंख बंद कर लो, ताकि एक बार पी लिया दूसरी बार भी पी लिया जाके और चिंतित कर देंगे, फिर गौचारण का लीला बंद हो जाएगा, मतलब कल से बाहर जाना बंद। तो फिर बड़ा दुख, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो इतना सारा ऐश्वर्य जो है वो छोड़कर यहाँ पर आते हैं ग्वाल बालों के संग खेलने के लिए। जब ग्वाल बाल कहते हैं कि जो मैया आती है बुलाने के लिए लंच में, हाँ आपने सुना होगा लीला, ये वत्सपाल लीला के अंदर तो पास ही में लीला हो करती ना, तो वो लंच के लिए घर पे आते थे, मैया उनको जाती थी बुलाने के लिए, चलो भैया अभी दोपहर को समय हो गया है, बाबा आ गए हैं, चलो भोजन के लिए। तो ये पहले पहले तो ऐसे दिखाते थे कि सुनाई नहीं कुछ, क्योंकि पहले रोहिणी देवी आती थी बुलाने के लिए, तो रोहिणी पुकार पुकार कर थकती थी, तो बोलती दीदी यशोदा देवी आप ही आ जाओ, अभी आप ही का सुनेंगे, तो आके डांट लगा देती तुरंत, कैसे बच्चे हो तुम, सड़क के सड़क छाप लड़के हो, हाँ कुछ कल्चर नहीं कुछ नहीं, नंद बाबा के पुत्र हो कि कोई गंवार लड़के हो, सड़क छाप लड़के हो, स्ट्रीट बॉय, ऐसा हम प्रभुपाद जी उसको अनुवाद करते हैं, क्या स्ट्रीट बॉय, चलो निकलो यहाँ से। अभी मैया का पावर जो है ना वो वात्सल्य में नंबर वन का है, हाँ उसके नंबर टू में यशोदा देवी है, और नंद महाराज का बहुत बाद में नंबर लगता है ये हायर हायरार्की के अंदर, क्योंकि पहले यशोदा देवी है, उसके बाद में रोहिणी देवी है, उसके बाद में गोपियाँ हैं ब्रज की, जैसे प्रभावती है और अलग नंदों की जो पत्नियाँ हैं, उसके बाद नंद बाबा का नंबर लगता है, उसके बाद में वसुदेव, उसके बाद में देवकी, ऐसा नंबर है उनका। तो उनके बाद सुनते हैं तो यशोदा मैया आकर डांटती हैं, तो तुरंत चलते हैं, अरे जा रहे हैं बाबा बुला रहे हैं, बाबा घर पे आए जाना पड़ेगा। तो ग्वाल बाल कहते हैं अच्छा अभी हार रहे हो तो बाबा का नाम दे रहे हो, हाँ कल आओगे तो तुमको खेल में लेंगे नहीं हम, ऐसा बृहद भागवतम में लिखा है भागवतामृत में कि ये ब्रजवासी बालकों की धमकी भगवान के लिए बहुत भयंकर है, वो सहन नहीं कर सकते कि कल मुझे ग्वाल बाल खेल में नहीं लेंगे तो मैं जीऊंगा कैसे। तो माँ की ओर मुड़ते हैं और दोबारा यू टर्न लेते हैं और फिर खेलने लगते हैं, क्योंकि ऐसे कहा गया कि उनके लिए ग्वाल बाल का ये वचन बहुत बहुत दुख देने वाला है, क्योंकि उनके लिए ग्वाल बाल इतने प्रिय है कि सब कुछ त्याग कर सकते हैं, वो पहले से ही ऐश्वर्य त्याग करके भगवत पद त्याग करके तो वृंदावन में नंगे पैर दौड़ ही रहे हैं, चोरी भी साथ में कर रहे हैं उनके लिए, तो ऐसा प्रेम है उनका। तो वही ग्वाल बाल ना केवल फिर दोबारा ना बताएं, हाँ फिर दोबारा बताएंगे तो मैया हमारा ग्वालचारण ही बंद कर देंगी, तो हमारा ग्वाल बालों का संग जो रोज का खेलना है वो बंद हो जाएगा, इसलिए भगवान ने उनसे आंख बंद करवा के आंख का प्राशन किया। ये दावाना लीला हुई है और उसके बाद में यहाँ पर राधा रानी और गोपियाँ हमेशा आती थी और भगवान को चैलेंज किया करती थी कुश्ती खेलने के लिए, अरे भगवान तो हमारे ऐसे विचित्र हैं, अरे बड़े बड़े राक्षसों को केवल मुक्का मार के हाथ लगा के ऐसा करके कभी तिनका लगा के मार देते हैं, और ग्वाल बाल के साथ में रोज कुश्ती हारते हैं। जब गिरिराज को उठाया था ना उन्होंने, तो मैया बोल रही थी देखो अच्छा हुआ ना मैंने 100 गायों को अलग करके उनका दूध अलग बनवा के अलग चारा खिलवा के उनका दूध को इतना पौष्टिक बना के रोज 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 उनको खिलाया, देखो आज काम आया ना, देखो इतना बड़ा पर्व हुआ। बोले अरे तूने तो सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा माखन तनिक खा ले, भी तू भूखा भी होगा, और ऐसा करो ये बायना हाथ से बहुत देर तक पकड़ के रखा है, अभी थोड़ा सा हाथ भी चेंज कर लो, ताकि मैं यहाँ से हाथ को थोड़ा मालिश कर लूँगी तब तक इस हाथ में पकड़ लूँ। लेकिन वो उनको यकीन है इस बात का कि मेरे खाए मक्खन से ही शक्ति उसको प्राप्त हो गई। तो ग्वाल बाल जोर से हंसते बोलते मैया को पतो ना है, मैया नहीं जानती है, अरे हमने सीदामा ने मधुमंगल ने उनको कुश्ती में रोज ट्रेनिंग देकर हराया था ना, उसका फल प्राप्त हो रहा है आज, इसलिए बढ़िया इतना गोवर्धन को उठा के खड़ा किया। ये देख रहे हैं हंस रहे हैं, तो गोपियां भी हंस रही हैं, तो ग्वाल बाल तो गंवार हैं सब, उनको कुछ पता नहीं, ये तो जानते भी नहीं है कि यहाँ से तिरछी नज़र में राधा रानी उनको देख रही है और वो भी उनको देख रहे हैं, और वो तिरछी नज़र में इतनी शक्ति है, उसके शक्ति के माध्यम से जो लिंक बना हुआ है कनेक्शन सर्किट पूरा हो गया है, उसमें से शक्ति प्राप्त हो रही है, इसलिए वो उठा उठा के खड़ा रहे। ये बात जो है ग्वाल बाल सुन लेते हैं, फिर वो बहस करते हैं, ऐसे कैसे हमने कुश्ती बनाया, हमने कुश्ती सिखाया, नहीं नहीं आई, तो फिर बोलते हैं कि बाद में दिखा देना कभी, आप जो कह रहे हैं उसका प्रमाण चाहिए हमको। तो गौधन लीला समाप्त होने के बाद में ग्वाल बाल मिलते हैं गोपियों से, कहते हैं अभी दिखाओ, तुमने जो इतने ताने मारे थे, जोर के तीर मारे थे, अभी दिखाओ। तो राधा रानी को गिरिराज के पास लेके जाते हैं और वो गिरिराज के जड़ में देखते हैं, नज़र को ऊपर उठाते हैं तो गिरिराज पूरा आकाश में चला जाता है। जितनी देर नज़र ऊपर है गिरिराज जी आकाश में रहते हैं। बहुत देर तक सब ग्वाल बाल देखते हैं अचंभित होकर, अरे तो चमत्कार हो गया, ना हाथ है, ना दूध है, ना मक्खन है, कुछ है नहीं, खाली देख रहे हैं बस, और गिरिराज आकाश में, अरे बाप रे, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। तो फिर वो कहते हैं अभी नीचे देख लूँ क्या, हाँ देख लो, नीचे करते हैं और गिरिराज जी को वहाँ पर विराजमान करते हैं वापस। तो ऐसे एक ग्वाल बाल का जो संघ है भगवान के लिए बहुत प्रिय है, और ये यहाँ ये एक जगह है यहाँ पर उन्होंने ग्वाल बालों के संघ में लीला किया है। इसी के पास में जो ये जो वेणुकूप है इसकी और भी लीला है, वैसे तो द्वापर की लीला में ये प्रकट होते हुए नजर आता है, लेकिन ये चिरंतन धाम है वेणुकूप। तो सत्ययुग में जब सत्यव्रत राजा को मत्स्य प्राप्त हुआ था ना, है ना, अचानक मत्स्य की प्राप्ति हुई थी और वो इतनी तेजी से बढ़ने लगा, तो एक समय पर एक साइज का था वो मत्स्य, तो सत्यव्रत मुनि राजा सत्यव्रत राजा ने उस मत्स्य को वेणुकूप में डाल दिया था, ये भी कथा आती है। और उसके बाद बड़ा होने पर फिर समुद्र में चले गए वो, और त्रेता युग में इस वेणुकूप को यक्षकूप कहते थे, क्योंकि यक्ष लोग यहाँ पर निवास करते थे, इसके साथ में रहकर भजन किया करते थे, इसलिए वेणुकूप द्वापर में वेणुकूप है और सत्ययुग में मत्स्यकूप है और त्रेता में यक्षकूप है। फिर इसके बाद में जब बाहर हम जाएंगे थोड़े से, तो एक भांडिर वट वृक्ष है, एक और बंसी वट कहते हैं उसे, ये भांडिर वट वृक्ष है जहाँ पर ठाकुर जी का विवाह हुआ था, और बाहर जाएंगे तो उसका बंसी वट नाम है। एक बंसी वट तो गोवर्धन वृंदावन में है, जमुना जी के किनारे में है, और दूसरा भी यहाँ पर जमुना जी के किनारे उपलब्ध है। तो जब भगवान निकल रहे थे यहाँ से मथुरा जाने के लिए, तो बंसी वट के सामने वो सुदामा को मिले। सुदामा जी बड़े व्याकुल थे कि ठाकुर जी हमें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, बड़े दुखी थे, बंसी वट के सामने खड़े थे, रो रहे थे। तो भगवान ने उनको वादा किया कि हम दो दिन में लौट के आएंगे। तो सुदामा ने कहा देखो पक्का लौट के आओगे तो बताओ। उन्होंने कहा आपको वादा करते हैं दो दिन में लौट के आएंगे। बोले अगर आप कह रहे हो कि दो दिन में लौट के आएंगे तो हम दो दिन ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, यहीं खड़े रहेंगे, जब आप आएंगे तो हम खाएंगे, ठीक है, निकल जाते हैं यहाँ से। और भगवान जो है 112 साल तक लौट के नहीं आते हैं, मतलब आते ही नहीं हैं, इस जगह पे आते नहीं हैं। तो सुदामा जी वहीं खड़े रहे, एक युग बीत गया, और जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए यहाँ पर लीला करते हुए, तो तभी भी सुदामा खड़े होकर रो रहे थे। तो महाप्रभु ने इनको आलिंगन दिया है और सुदामा को फिर गोलोक धाम की मुक्ति करा दी है, ऐसे वर्णन आता है। तो ये बंसी वट वो वट है जहाँ पर भगवान ने रास भी रचाया है, एक बंसी वट वृंदावन का है, एक यहाँ का भी है भांडिर वन का। तो ये रास लीला का स्थली भी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थली है, मतलब क्या खजाना है पूरा यहाँ पर, लीलाओं का खजाना है। हाँ, तो भांडिर वन के निकट में सुदामा जी का मंदिर है, वहाँ पर ये लीला हुई है। तो आप सब लोग को भांडिर वन आने की बधाई हो और भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी आपके साथ एक ही इच्छा है, क्योंकि अब जब मैं आ रहा था वृंदावन से, तो हमारी एक बहन है वहाँ पर, उनको मिला है, तो हमने कहा कि हमारी आपके लिए निमंत्रण है, आज भांडिरवन में ब्याहुला होने वाला है। तो मैंने बताया उनको कि आप आइए, श्याम सुंदर जी विवाह करेंगे आज श्री जी महारानी के साथ, और ब्रह्मा जी आएंगे पुरोहित बनकर, और भोजन की व्यवस्था भोगला आश्रम में है। मैंने कहा अच्छा, तो सब बाराती नाचेंगे ना धूमधाम से। बोले हाँ, कोरी कोरी ब्याहुला करने से क्या लाभ है, शादी में सब लोग नाचते हैं प्रेम से, अरे श्याम सुंदर का विवाह हो रहा है, शिव जी के साथ में हो रहा है, सब लोग नाचो, तो ये उनका आदेश है, इसलिए आपको सबको नाचना है, इस भाव से नाचना है कि आज श्याम सुंदर की शादी श्रीमती राधा रानी से हो गई है और इस खुशी में सब भक्त लोग नाच रहे हैं, जिनको निमंत्रण नहीं था उनको निमंत्रण मिला है, इस खुशी में नाच रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाओ और नृत्य करो। हरे कृष्णा।